शांति। कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मीठा बाबा हम बच्चों को अपना बनाते हैं। हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? हमको भगवान मिला है। मिला है? मिला है? भगवान पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? नई सत्युगी दुनिया में ले चलते हैं। केवल मनुष्य से देवता नहीं बनाते, लेकिन बाबा विश्व का मालिक बनने बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम मनुष्य आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बना देते हैं, बदल देते हैं। हम प्यार से कहते हैं मीठे बाबा। गीत सुना ना, मीठे बाबा। हम महसूस करते हैं बाबा बहुत मीठा है। इस संसार का नियम है, आप जिसके संग में रहते हैं उसका रंग जरूर लगता है। लगता है? लगता है ना। जैसे आप मधुबन में आए हैं, अपने अपने स्थान पर जब रहते हैं, अपने परिवारों में रहते हैं, अपने कारोबार अपने धंधे में रहते हैं, तो सब अपने भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेसेस, कलरफुल कपड़े पहन के रहते हैं। और जब मधुबन आते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सोचते हैं सफेद। हाँ, अगर किसी के पास सफेद नहीं भी होगा ना, तो क्या करता है? चलो ऊपर जो है ना कोई दुपट्टा या कुछ वही वाइट हो जाए तो रंगीन जरा ढक जाए। हमारी जब बड़ी दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि जी, आपको मालूम है, आपको सौगात में सफेद शॉल मिलती है हमेशा। बड़ी दादी को क्लास में विशेष रूप से माताएं, भाई तो मोस्टली व्हाइट शर्ट्स पहनते ही हैं, माताएं कलरफुल पहनती हैं, तो सबने कलरफुल पहना होता। दादी कहती थी अच्छा नहीं लगता, सबको सफेद शॉल दो। अधिकतर सर्दी के मौसम में काफी प्रोग्राम चलता है, तो मान लो रंगीन भी पहना हुआ है और ऊपर अगर सफेद शॉल ओढ़ लेंगे तो रंगीन दब जाता है, ढक जाता है। तो स्थान का प्रभाव, संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। आप स्थूल रूप में देख लीजिए, माताओं को अनुभव होगा, आप किचन में खाना बनाते हैं। आज थोड़े ज्यादा लोगों का खाना आपको बनाना था और आपने हरी मिर्ची बैठ के काटी या ग्राइंडर ने काम नहीं किया और थोड़ी पीसी होगी, तो मिर्ची तो आपने पीस के काट के सब्जी में, दाल में डाल दी और उसके बाद और भी कई काम कर लिए। अचानक वो मिर्ची वाला हाथ अगर ऐसे लग जाए फिर क्या होता है? कहेंगे हाथ तो धो लिया था, लेकिन मिर्ची अपना चटपटापन जो है वो इन हाथों में छोड़ जाती। आप चंदन घिस लीजिए, कईयों ने भक्ति मार्ग में चंदन घिसा होगा। चंदन भी घिसते हैं तो वो तो घिसा, तिलक लगाया, थोड़ा कटोरी में डाल के उठा के रख दिया, लेकिन वो चंदन की खुशबू सारा दिन नहीं तो आधा दिन तो उन हाथों में आती रहती है। और शायद भक्ति मार्ग में इसीलिए इस प्रकार के कई कर्म कांड कहें, रसम कहें, आजकल लोग इतना सेंट लगाते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में अपने आप ही हम सुगंधित हो जाते थे। भक्ति करते थे, थोड़ी अच्छी अच्छी धूप जगाएंगे, अगरबत्ती जगाएंगे, चंदन घिसेंगे, 10-15 मिनट वहां पूजा के कमरे में बैठेंगे, तो वो जो खुशबू है धूप अगरबत्ती की, चंदन की, वो अपने कपड़ों में भी भर जाती है। होता है ऐसा? नहीं होता है भाई? होता है, होता है ना। आप भाइयों को ये भी अनुभव होगा, आप लोग अधिकतर जब अपने शहरों में रहते हैं, अपने अपने धंधे पर इधर उधर आना जाना, और कई बार अपना व्हीकल नहीं होता है, अपन कोई ट्रांसपोर्ट, कोई बस, कोई ट्राम, कोई मेट्रो, कोई ट्रेन, किसी दूसरे के साथ बैठ के जाते हैं, और अगर वो व्यक्ति, उसने सिगरेट पी है, शराब पी है, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, ना सिगरेट को ना शराब को, लेकिन उसकी बदबू भी हमारे कपड़ों में आ जाती है। होता है ऐसा? होता है। अब देखिए, विचार कीजिए, हम बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य रोज सुनते हैं। आप सब जो बैठे हैं रोज सुनते हो? जो नहीं सुनते वो हाथ उठाओ। तो कहेंगे सब सुनते हैं, कोई इक्का दुक्का शायद प्रश्न नहीं समझा, या हो सकता है कहीं सेंटर से दूर रहते होंगे जो रोज मुरली नहीं सुनते हैं, इक्का दुक्का। लेकिन मुरली वास्तव में हम रोज सुनते हैं सब, अधिकतर, ज्यादा नहीं तो 96% तो मुरली हम सब बाबा के बच्चे सुनते हैं। बाबा की मुरली कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? सब सुनते हो ना, चाहे कभी लेट भी पहुंचते होंगे तो कहेंगे बहन जी आज आधा पेज छूट गया, एक पेज छूट गया, जरा दो, तो पढ़ते हो ना, मीठे बच्चे। बाबा क्या कहता है हमें? और जब मुरली खत्म हो जाती है तो बाबा क्या कहता है? तो बाबा क्या कहता है? याद प्यार किसको देता है? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को। तो कभी आपने इस बात पे गौर किया कि जब हम मुरली सुनने बैठे थे तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा ये मानकर चले कि ये मेरे सब मीठे बच्चे हैं, और नहीं भी होंगे तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो अब ये मीठे बन रहे हैं। और 3-4 पेज की मुरली सुनते 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 बाबा ऐसा मानते हैं कि ये मेरे बच्चे मीठे से मीठे मीठे तो हो ही गए हैं। लेकिन अगर आज बाबा सचमुच मेरे सामने आ जाए और मुझसे पूछे कि बच्ची तुम मीठी बच्ची हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हर कोई अपने से पूछे, अगर बाबा आज अभी मेरे सामने आकर पूछे बच्ची तुम मीठी बच्ची हो, तो मेरा क्या जवाब होगा? मीठी हूं या खट्टी हूं, या कहूंगी बाबा मैं खट्टी मीठी हूं, कभी कभी बीच में खट्टी भी हो जाती हूं फिर मीठी भी हो जाती हूं, या मैं कहूंगी बाबा मैं कड़वी बच्ची हूं, कसैली बच्ची हूं, क्या कहूंगी? क्या कहूंगी? जो बाबा के घर में आते हैं, आप जब मधुबन में आते हैं, अधिक नहीं तो महीना दो महीना पहले से तो अपना प्रोग्राम बनाते हो ना, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, यज्ञ सेवा के लिए तैयारी करते हो, सौगात के लिए तैयारी करते हो, आने के लिए अपनी कपड़ों की, अपनी टिकट की तैयारी करते हैं। और ये भी हम जानते हैं ये हमारा तीर्थ कोई दुनिया के तीर्थों की तरह नहीं है कि हम गंगा जी के किनारे गए, एक दिन हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, एक डुबकी लगाई, बस पतित से पावन हो गए, ये भी नहीं है। तो बाबा जो हमें देखना चाहते हैं, ये मेरे बच्चे कौन से बच्चे हैं? मीठे बच्चे हैं। केवल मीठे नहीं, बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चे हैं। तो ये जो मेरी मधुरता है, ये कहां से प्रारंभ होनी चाहिए? कोई बताए, मधुरता कहां से? टोली खाने से, टोली बनाने से? कहां से शुरू होनी चाहिए मधुरता? कहां से शुरू होनी चाहिए? बोलिए माताएं, हमारी ये जो मधुरता है, मीठापन है, ये कहां से शुरू होना चाहिए? मुश्किल है प्रश्न, मुश्किल है। भाई भाइयों में हम ये देखें, हम सारे दिन में मीठा कितना बोलते हैं। बुरा नहीं मानना, आप अगर अभी से भी चेक करेंगे, अभी 6 बजा है, रात के 10 बजे तक, आज बाबा ने सवेरे मुरली में कहा था, बच्चों के हाथ में नोटबुक होनी चाहिए और अपना चार्ट चेक करना चाहिए। भाइयों की जेब में अक्सर छोटी कोई ना कोई डायरी कागज रहता है। आप 4 घंटे में नोट करना, मैंने मीठा कितना बोला। मीठा बोलना माना क्या? मीठा बोलना माना क्या? अब मेरे जैसा कोई होगा कहेगा, भाई मेरी तो आवाज ही बहुत ऊंची है। कोई तो बहुत धीरे सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मेरा तो आवाज बहुत ऊंचा। मीठा माना क्या? मैंने जिससे बात की विद रिस्पेक्ट बात की, रिगार्ड से बात की, सत्कार से बात की, निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से बात की। कई बार हम देखते हैं, हम कईयों को जानते होते हैं, कई हमें जानते होते हैं, एक दूसरे के पास से हम यूं निकल जाएंगे, नमस्ते, ओम शांति, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, कुछ नहीं। ठीक है, आप अपने गए, हम अपने गए। इग्नोर, जिसको कहते हैं इग्नोर कर देते हैं। भले हमने बोला कुछ नहीं, बोला नहीं कुछ भी, कर्म तो हुआ ना या नहीं हुआ बताइए? कर्म तो मेरा हुआ ना। अब ये जो मेरा कर्म हुआ, चलो दूसरे ने, मैं कहूंगी ये भाई जी मुझे जानते थे और ऐसे ही चले गए, ओम शांति नहीं की, वो तो ऐसे गए, मैं भी जानती थी, मैंने की। मेरा खाता कौन सा जमा हुआ? कोई कहेंगे ऐसे फालतू में भी क्या, फालतू क्यों? अगर हम एक दो को जानते हैं तो मीठी दृष्टि से, मीठी वाणी से, नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, कुछ तो कह सकते थे। और होता है, जहां हमारी दोस्ती होती है थोड़ी सी, मान लो मैं बहुत जल्दी में हूं और कोई बहन या भाई मेरे बहुत करीब के हैं जिनको मैं जानती हूं, लेकिन मैं जल्दी में हूं, तो हम क्या करते हैं उस समय? कुछ बोल नहीं पड़ते हैं, बोल नहीं सकते नमस्कार ओम शांति, पर दूर से भी यूं यूं कर देंगे, दूसरा समझ जाता है कि हाँ आज इसको कोई जल्दी है, लेकिन बस ये करके माना, मैंने आपको देखा, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया, आपने भी यूं किया, आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया। मीठा माना क्या? मीठा केवल बोलना नहीं, कोई कोई बहुत फिर आर्टिफिशियल मीठा बोलते हैं, आर्टिफिशियल मीठे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने विद रिस्पेक्ट, रिगार्ड मीठा बोला, मैंने सत्कार दिया, सत्कार की भावना मेरी अंदर में रही, चाहे वो छोटा है, अब कोई छोटा है, मैं बहुत जल्दी में हूं, मैं उसको जानती हूं, वो मुझे जानता है, मैंने थोड़ा सा यूं यूं किया। अब यूं करने से उसको कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन वो छोटे के अंदर एक उमंग आया और वो कहता है कि ये बड़ा व्यक्ति था, मुझे जानता था, देखो बिजी था तो भी दूर से यूं यूं किया, उमंग बढ़ा ना। तो मीठा माना हम रिस्पेक्ट रिगार्ड भी दूसरे को दें और दूसरे का उमंग बढ़ाएं। अगर हम उमंग नहीं बढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देते हैं, फिर मेरा खाता कौन सा जमा हो रहा है बताइए, बताइए कौन सा जमा हो रहा है, पाप का या पुण्य का? घाटे का खाता है ना। संगम युग पर बाबा ने हमारा खाता कौन सा खोला है? बाबा ने कहा है, बच्चे कई बार साकार मुरलियों में सार में भी आता है, अभी विकर्मों का खाता बंद करो, पापों का खाता बंद करो, और कौन सा खाता शुरू करो? दुआओं का खाता, पुण्य का खाता शुरू करो। मैंने आज सारा दिन में कितनी दुआएं कमाई? साधारण भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो अगर हम चेक करेंगे, ऐसे ही रफ डफ सा बोल लेते हैं एक दूसरे को, अरे तूने खाना खा लिया, अब आपको कैसा लगा? आप कहेंगे ये बहन जी कैसे बोलती है। और एक है हम प्यार से, आपने खाना खाया नहीं तो आइए मेरे साथ। माना जहां हम दो बराबर के लोग हैं, जहां हमारा स्नेह संबंध है, उनके साथ भी हम रफ बोलते हैं। ऐसा कुछ हमारा संस्कार बन गया है। अब ये जाने अनजाने में ना सुनने वाले को भी बुरा नहीं लग रहा। अभी मान लीजिए भोजन का समय हो जाएगा, मैं कहूंगी चलो हम एक ही शहर से आए, आओ आओ चलो खाना खाने चले, आप भी चल देंगे, आपको भी बुरा नहीं लगा, मुझे भी बुरा नहीं लगा, लेकिन ये कर्म जो हमने किया रफ, ये कौन से खाते में गया? तो संगम युग पर हम बाबा के बच्चों को बहुत बहुत सावधान रहना है। किस बात के प्रति? किस बात के प्रति? अपने कर्मों के प्रति। कर्म मैं कुछ भी कर रही हूं, मेरा उसमें आप चाहे पाप और पुण्य कहो, घाटा और फायदा कहो, अच्छा या बुरा कहो, मीठा या कड़वा कहो, वो तो जमा हो ही रहा है। हम बाबा का बनने के बाद क्या अपने कर्मों के प्रति इतने सचेत, इतने जागरूक हुए कि मेरा कर्म हर घड़ी कैसे होना चाहिए? छोटी सी बात बताती हूं। माताएं बहनें हमारी भोजन बनाती हैं घरों में, किसी के घर में दो लोग होंगे, कहीं चार भी होंगे, कहीं दस भी होंगे, आजकल तो अधिकतर छोटे परिवार हैं, चार पांच है ना, हो सकता है कोई कोई ज्वाइंट फैमिली भी हो तो दस लोग होंगे। कभी कभी हम थोड़े थके हुए होते हैं, दोपहर का समय है या रात का समय है, और हम क्या कहते हैं, मैंने रोटी बना के रख दी है, खानी है तो खाओ, नहीं तो आपकी मर्जी, मैं तो जा रही हूं सोने, मेरे तो सिर में दर्द है। होता है ऐसा माताएं? होता है, होता है या नहीं होता है? जो कहते हैं होता है वो हाथ उठाओ। अधिकतर होता है, भले कोई एक दो कहेंगे नहीं होता, कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर में आज इतनी देर हो गई है, कोई खाना खा, चिड़ 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 चिड़। अब ये कर्म तो हो रहा है ना, मैंने खाना भी बनाया मेहनत से, चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रियली मेरे सिर में दर्द है, मुझे माइग्रेन है। अब मैंने आधा घंटा एक घंटा लगा के 4-8 लोगों का भोजन बनाया। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि भाई आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने बना के रखा है, फिर आप लोग थोड़ा सहयोग देना, भोजन कर लेना। कहेंगे उस समय दर्द इतना होता है, हम ऐसे कैसे बोलेंगे, भाई जिसको खाना है खा लो, नहीं खाना ना खाओ। ये नहीं खाना ना खाओ का मतलब क्या है? अब हंस रही है माताएं, राइट बात है, ये अक्सर होता है। जिन लोगों के घरों में सर्वेंट काम करने आते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने वाले, चाहे बर्तन साफ करने के लिए, चाहे वॉशिंग के लिए, मान लो उसका टाइम 9 बजे या 10 बजे फिक्स है, लेकिन आज वो काम करने वाला कितने बजे आया है, 11 बजे, और मेरे घर में कोई 2-4 मेहमान भी आए हुए हैं। अब जब वो 11 बजे सफाई वाला, वॉशिंग वाला, बर्तन साफ करने वाला, चाहे वो माई है चाहे कोई भाई है, आएगा, मेरा तुरंत रिएक्शन क्या होता है, मैं क्या दिखाऊंगी, अरे भाई तुम तो रोज ही लेट। वो हो सकता है महीने में 2-3 दिन लेट आता है, लेकिन तुरंत तुम तो रोज ही लेट आते हो, कभी टाइम से आते नहीं, घर में मेहमान आए होंगे तब तो जरूर लेट आओगे, चलो अब जल्दी जल्दी काम कर लो। वो काम करने वाला भी क्या कहता है, कहता है ये मालकिन को, ये सेठानी को, ये बीवी जी को तो आदत ही है बोलने की। हो सकता है उसका कोई जेन्युइन कारण था, उसके भी घर में मेहमान आए थे, उसके भी घर में कोई बच्चा बीमार था, उसको भी आज बिजली का पानी का बिल भरना था, उसके यहां भी कोई काम था, आते आते उसके हाथ में या पांव में चोट लग गई, उसने सोचा मैं पहले डिस्पेंसरी से थोड़ी पट्टी करा के जाऊं, लेकिन हम वो कुछ भी सुनने को देखने को तैयार नहीं, और हमारा मीठापन कहां घुल जाता है, अरे तुम तो रोज ही लेट आते हो। एक ये भी तरीका है, आया और मैंने फट से गुस्से में नहीं कहा, लेकिन एक उलाहना दिया, अरे भाई तुम तो रोज ही लेट आते हो, आज घर में मेहमान आए हैं तो भी लेट आए हो। मैंने केवल उलाहना दिया, गुस्सा नहीं किया, है ये भी गुस्से का रूप। उसने काम भी कर दिया, लेकिन जब मैंने उसको उलाहना दिया, उसको खुशी मिली, उसकी शक्ति मैंने बढ़ाई, और ही उसकी शक्ति कम हुई कि आज हमारी मालकिन बीवी जी तो थोड़ी नाराज हो गई हैं। और एक ये भी तरीका था जो मैं ये कहती कि अरे भाई आज लेट आए, कोई बात नहीं, अच्छा अब आ गए हो, पहले चाय पी लो, गर्मी के दिन है तो थोड़ा शिकंजी पानी पी लो, और फिर आज जरा अच्छे से काम करना, थोड़ा टाइम लगाना, घर में मेहमान भी आए हैं। कौन सा तरीका अच्छा है, उलाहना देना या वेलकम करना? लेकिन अधिकतर क्या होता है, सच सच बताना, अधिकतर क्या होता है, अधिकतर उलाहना होता है। अधिकतर हमारा उलाहना ही होता है, उलाहना तो छोड़ो, ब्लास्टिंग ही हो जाती है, और हम यहां तक कह देते हैं तुम तो लेट ही आते हो, 2-2 दिन छुट्टी कर लेते हो, तुम्हारा तो इस महीने में हम पैसा काटेंगे, और थोड़ा सा जो उसकी बेचारे की शक्ति थी और चली गई, ब्लास्टिंग हो जाती है, लड़ लेते हैं। तो कहां बाबा ने मुझे सवेरे सवेरे क्या कहा था, क्या कहा था याद है? मैं तो भूल गई। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, लास्ट में बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे, और मैं सारा दिन क्या कर रही हूं? मेरा कोई साथी है, सहेली है, बहन है, हम दोनों एक कमरे में हैं, कमरे को लॉक किया, अब चाबी कहां रखी है बातों बातों में मुझे याद ही नहीं है, अब वहां फिर चालू हो जाएगा। तो मीठे भाई बहनों, आप कहेंगे बहन जी ये सारी इतनी कहानियां क्यों सुना रहे हो? कहानियां नहीं है, आपको ये कहानी लग रही है, ये रियलिटी है। हम बाबा का बनने के बाद इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कभी विचार करना, अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो आपको अपने ऊपर, दूसरों पर नहीं अपने पर रहम आएगा, बाबा ये क्या हो रहा है, हम आपके बने, आप हमें सत्युग में ले जा रहे हैं, आप हमें देवता बना रहे हैं, ये मेरे कौन से संस्कार हैं? क्या मैं इन संस्कारों से सत्युग में जा सकती हूं, देवता बन सकती हूं? और बाबा ने जो मेरा पहले दिन जब मैं बाबा के घर में आई थी, एक बाबा की अव्यक्त मुरली है, बहुत साल पुरानी है, मुझे वो तारीख तो नहीं याद है, बाबा ने कहा बच्चे जब कोई भी बाबा के घर में आते हैं, ज्ञान की बातों को समझते हैं, और समझने के बाद चाहे दो दिन या दस दिन के बाद जब भी दिल से कहते हैं बाबा, तो बाबा रिटर्न में, क्योंकि बच्चा अभी बाबा बोलना सीखा है, तो बाबा क्या करता है, रिटर्न में उसको दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। बुद्धिवान तो हम सब बहुत हैं, आज के युग में चाहे कोई ग्रामीण हो शहरी हो, दुनिया में इतना एक्सपोजर है, आजकल का वातावरण ऐसा है, जो बुद्धिवान तो सब हैं। हम ये नहीं कह सकते ये तो अनपढ़ हैं, गांव के हैं, इनको कोई समझ नहीं, नहीं नहीं, वो जमाना बदल गया, बुद्धिवान सब हैं। लेकिन बाबा हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, और वो दिव्य बुद्धि की माना कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू इन द सेंस कि आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ता है, बाबा हमें गिफ्ट देते हैं, वरदान देते हैं। ये मेरे बच्चे ने आज पहली बार कहा बाबा, बाबा उसको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। लौकिक रीति में भी जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, साल भर का शायद बच्चा बोलना शुरू करता है, जब पहली बार बोलता है तो मां बाप को कितनी खुशी होती है। आप सोचो जब हम बाबा के बच्चे दिल से कहते होंगे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बाबा हमें रिटर्न में क्या देता होगा, क्या देता होगा? बाबा भी हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। दिव्य बुद्धि माना स्वच्छ बुद्धि, साफ बुद्धि, ज्ञानवान बुद्धि। और आप देखेंगे, याद कीजिए अपने शुरू शुरू के दिन, आप 5 साल, 10 साल, 1 साल पहले जब ज्ञान में आए, बाबा के बने। अधिकतर भाई बहन ये अनुभव सुनाते हैं कि जब हम शुरू शुरू में आए और ज्ञान को समझा, हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, हमारी लगन बहुत तेज थी, मन होता था सारा दिन बाबा की सेवा करें, हमारा धंधा भी बढ़ा, घर में भी सुख शांति हुई। लेकिन कुछ समय के बाद पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? आप बाबा के बने 6 महीना, साल, 2 साल, जब तक आप मधुबन में आए पहली बार, बहुत उमंग में, हम बाबा के घर जा रहे हैं, हम बाबा से मिलेंगे, हम बाबा से शक्ति लेंगे। लेकिन अब जब 4-5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, अब तो मेरा पुरुषार्थ वो नहीं है। अब क्या है? क्या करें बहन जी, अब तो शायद बूढ़े हो गए हैं, घुटनों में भी दर्द है, कंधे में भी दर्द है, सिर में भी दर्द है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। आप समझते हैं क्या अंतर आया? पहले जब हम बाबा के बने और हमें जैसे बताया गया आप आत्मा हैं, अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, और हमने आत्मा समझकर बाबा को याद करना शुरू किया। उस समय भले हमारे पास कोई समस्याएं थी या नहीं थी, बच्चे अच्छा पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, खुद की भी कोई नौकरी या धंधा था या नहीं था, बस ये लगा कि ये इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा बहनों का व्यवहार, इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा मधुबन, इतना बड़ा मधुबन, बस हम वो देख देख कर हर्षित हो रहे थे, और जो अपने कष्ट थे उनको थोड़ा एक किनारे किया हुआ था। और अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब हम बाबा को याद करते हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बाबा मेरा जो धंधा है ना, आगे से तो अच्छा है, पर अब भाई, अब आगे से तो अच्छा है। बहन जी जब ज्ञान में आए ना, हमारे पास कुछ नहीं था, बाबा ने सब कुछ दिया है, लेकिन अब हम किसी ना किसी भाई बंधु को, दोस्त को, पड़ोसी को देखते हैं और सोचते हैं मेरा धंधा उससे भी अच्छा। अब मेरी दृष्टि कहां जाने लगी? अब यूं चलने लगी। मेरी बुद्धि किधर जा रही है? पहले कैसे चल रही थी? पहले ऐसे चल रही थी, बाबा मिला, नया नया ज्ञान मिला, मैं आत्मा परम धाम से आई हूं, बाबा परम धाम में रहता है, बस अभी हमें स्वर्ग की दुनिया में, सत्युग की दुनिया में, हाथ, आंखें, दिल, दिमाग सदा ऐसे था। दुनियावी रीति में भी आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कितना समय लगता है, और जब प्लेन से जाते हैं तो कितना समय लगता है। तो बाबा के बने हम प्लेन में बैठे थे, हेलीकॉप्टर में बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया? क्या किया? प्लेन से उतर गए। अरे इतना अच्छा बाबा ने ये ज्ञान योग का प्लेन मुझे दिया। बाबा कहता बच्चे मैं तुम्हें उड़ा के ले चलूंगा, और हम उड़ने की बजाय गाड़ी और बस तो छोड़ो, पैदल चलने लग गए। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। पैदल चलते हैं तो ये सब दिखाई देगा ना। आप बस में, गाड़ी में, कार में जा रहे हैं, उसकी भी कुछ स्पीड होती है, कितना जल्दी जल्दी चीजें पीछे छूट जाती हैं। हम एकदम पैदल चलने, इसने क्या किया, उसने क्या किया, आपको ये किसने दिया, आपको ये किसने दिया। कहां हम प्लेन वाले पैसेंजर्स, और कहां हम नीचे धरती पे चलने लगे, तो क्या हुआ, सुखी होंगे दुखी होंगे? क्या विचार है? तो पहली बात हम ये याद करें, हम यहां अपना दुआओं का खाता बनाने आए हैं। क्या करने आए हैं? दूसरी बात, अपने कर्मों के प्रति जागरूक बने। मेरा हर कर्म, आप औरों की चिंता छोड़िए, मेरा हर कर्म कम से कम मुझे तो शक्ति दे, मुझे तो सुख दे। विचार कीजिए, आज कुछ भोजन में अच्छा बना हुआ है, पकौड़ा बना, खीर बनी, मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, मीठा है, बहुत अच्छा लगता है। नियम अनुसार सबको एक एक कटोरी मिला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक की जगह पहले आधी ली, फिर मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी बनी है, आधी और ले लेती हूं, देने वाले ने भी दे दी, अब दो खा ली, अब कष्ट कहां होगा? कष्ट कहां होगा? कहां होगा? होगा या नहीं होगा? फिर क्या कहते कहते आज ओवर ईटिंग हो गई है। अरे भाई, ये ओवर ईटिंग किसने की थी? ये किसने की थी? लोभ वश, क्योंकि बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, देने वाले ने भी ना नहीं की, चाहे वो बाबा का घर है चाहे वो अपना घर है, घर वालों ने भी सोचा, बाबा के घर में भी सोचा, चलो ये बाबा के बच्चे हैं या इस व्यक्ति को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, दे दो। और हमने भी क्या किया, उसको जी भर के खाया, अब कष्ट कहां होगा बताइए? किसको होगा कष्ट? फिर खुद को होगा, ओवर ईटिंग हो गई। वो ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स, उनसे सब वाकिफ है, वाकिफ हो ना, फिर ओवर ईटिंग के बाद क्या क्या होता है। फिर दूसरे दिन कहेंगे आज तो मैं नाश्ता नहीं करूंगी, आज पेट ना थोड़ा भारी भारी है। अरे पहले दिन इतना क्यों खाया था जो दूसरे दिन का मेरा नाश्ता ही छूट गया? ये है अब आत्मिक स्थिति। बहुत से भाई बहन पूछते हैं, बहन जी जो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये आत्मिक स्थिति क्या कर्म करते हुए रह सकती है? मैं आत्मा हूं, भोजन इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए एक डीजल है, पेट्रोल है, गाड़ी को पेट्रोल डालना तो जरूरी है, बिना पेट्रोल के तो कोई गाड़ी अभी तक चलती नहीं है, चाहे किसी भी एनर्जी से चले, चाहे सोलार से चले, चाहे पेट्रोल से चले, एनर्जी तो चाहिए। तो भोजन प्रसाद रूप में मुझे ग्रहण करना है, बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है। बच्चे जब भोजन खाते हो तो कैसे खाओ? कैसे खाओ? कैसे खाओ? मेरी याद में खाओ। और कैसे खाओ? और कैसे खाओ बोलो? बाबा की याद में खाओ, वो तो हो गया, और कैसे खाओ? मौन में रह के खाओ। कहा है ना बाबा ने या नहीं कहा है? और हम कैसे खाते हैं? हम कैसे खाते हैं? जब थाली लेते हैं बाबा को याद करते हैं, कभी कभी तो भूल ही जाते हैं। चलो बहुत बाबा के हम पक्के बच्चे हैं, थाली ली दो मिनट बाबा को याद किया, अकेले हैं तो खुद ही गटागट खा गए। क्यों? क्योंकि मुझे तो अभी जल्दी जाना है, दुकान खोलना है, ऑफिस में जाना है, मार्केट में जाना है, तो या तो जल्दी जल्दी खुद ही खा गए। और अगर दो चार के साथ बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं तो तेरी मेरी कर ली, आज फलाने का ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। मित्र दोस्तों के साथ बैठे हैं तो कुछ और, पॉलिटिक्स में ये हो गया, उसका ऐसा हो गया। ये दिव्य बुद्धि काम नहीं कर रही है। आत्मिक स्थिति माना, हम अपने दिव्य बुद्धि का प्रयोग करके, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके और अपने आप को ऊंचा उठाए। मैं भोजन कर रही हूं, बाबा ने कहा बच्चे मेरी याद में करना, मौन में रह के करना। अब ये बाबा का एक बहुत छोटा सा डायरेक्शन है। छोटा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए कितनी मोटी बात है कि खाना हमें बाबा की याद में खाना है। यूं तो बहुत गहरी सूक्ष्म बात है, लेकिन मोटा रूप बाबा की याद में खाना है, मौन में रह के खाना है। लेकिन हम में से कितने भाई बहन हैं जो इस डायरेक्शन का पालन करते हैं? कितने कम हाथ उठते हैं। अब जब हम बाबा के डायरेक्शन का पालन करते हैं, सबसे पहली बात भगवान की डायरेक्ट मुझे दुआएं मिलती हैं। मैं बाबा का बच्चा हूं ना, बाबा रोज देखता है। याद होगा अभी एक दो साल पहले की बाबा की मुरली थी, बाबा ने कहा बाबा सबके घरों में चक्कर लगाते हैं, गृहस्थियों के घरों में, सेंटर्स पर तो लगाते ही हैं, गृहस्थियों के घरों में भी बाबा चक्कर लगाते हैं अमृत वेले। अब बाबा रोज मुझे देखता है और बाबा देखता है ये बच्ची मेरी याद में खा रही है, मौन में खा रही है। अगर मैं खा रही हूं तो बाबा क्या कहेगा? मुझे वरदान देगा ना। अब जिसको भगवान का वरदान मिल जाए उसको कौन हरा सकता है? कौन हरा सकता है? अभी हम मधुबन में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, चार पांच दिन हम सब बाबा के घर में रहेंगे, रहेंगे ना, भोजन भी करेंगे, तीन वक्त करेंगे, नाश्ता भी करेंगे, दोपहर का भी करेंगे, रात का भी करेंगे। चार दिन में हम ये अभ्यास अवश्य करें, मुझे मौन में रहकर भोजन करना। साथी को मत ढूंढो, मित्र दोस्त को मत ढूंढो, अरे मैंने तो थाली डलवा ली, वहां लंबी लाइन थी, तूने डलवाई या नहीं डलवाई? अरे भाई वो भी अपनी लाइन में डलवा लेगा, मैंने डलवा ली, मैं बाबा को याद करूं, मैं बाबा की याद में गाऊं, तो मेरा दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। और दुआओं का खाता जितना बढ़ता जाएगा उसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि मेरे में स्वतः ही परिवर्तन आता जाएगा। परिवर्तन की हम मेहनत ना करें। बहुत बार बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत नहीं मोहब्बत, पढ़ी होगी ना ये बाबा की मुरली, एक बहुत पुरानी अव्यक्त मुरली है। बाबा को भी रहम आता है जब बच्चे मेहनत करते हैं, तो बच्चे मेहनत नहीं मोहब्बत करो। बाबा की याद भोजन पर कब आएगी? जब हमें हमारा प्यार बाबा से होगा। अब बताइए इसमें कोई मेहनत करनी है? कोई मेहनत करनी है? बाबा की याद में खाना है, मौन में रह के खाना है। मौन का मतलब ये नहीं अच्छा चलो अब मैं बोलूंगी तो नहीं, लेकिन इधर उधर अरे तुम क्या लाए हो, अच्छा ये चीज भी थी, ये मैं तो भूल गई लाना। किसी को नहीं देखना है। हमारे जगदीश भाई जी थे जिन्होंने सारा साहित्य लिखा है। एक जमाना था हम सब लोग ऊपर मधुबन में ही रहते थे और मधुबन में एक छोटा नीचे में वीआईपीस भोजन का रूम है, एक उसके साथ बड़ा वो भी वीआईपीस का ही रूम है। हमें याद है हम लोग तो तब सेवा के क्षेत्र में आयु अनुसार अनुभव अनुसार बहुत छोटे थे, शुरुआत थी। जगदीश भाई जब भोजन करते थे तो उनकी जो एक टेबल थी वो उस कमरे के कोने में, खिलाने वाला भी ध्यान रखता था कि मान लो मैंने अपनी थाली ली उस टेबल पे, क्योंकि टेबल खाली है, सिंपली है, जाके बैठ जाएं, कहेंगे नहीं जगदीश भाई आए हैं वो आके भोजन करें, उस टेबल पर कोई नहीं बैठेगा, वो खिलाने वाला ध्यान रखेगा। और जगदीश भाई जी जब भोजन करते थे, अगर हम लोगों को टेबल पर बैठना हो तो हम कौन सी सीट ढूंढेंगे? मान लो चार छह कुर्सियां हैं, हम कौन सी कुर्सी लेंगे? ऐसी कुर्सी पर बैठेंगे जिससे हमें सब दिखाई दे, हाँ, दरवाजा भी दिखाई दे, आने जाने वाला भी दिखाई दे, सामने वाला भी दिखाई दे। लेकिन जगदीश भाई जी किस कुर्सी पर बैठते थे? जिस कुर्सी पर बैठने से उनका मुंह दीवार की तरफ होता था। तो कई बार जगदीश भाई अनुभव सुनाते थे कि मैं जब भोजन करता हूं मैं जानबूझकर ऐसी कुर्सी पर बैठता हूं कि बस मेरा मुंह दीवार की तरफ हो, नहीं तो कई बार आने वाले भाई बहने भी बार बार, मान लो भोजन भी कर रहे हैं, तो कहेंगे ओम शांति भाई साहब, ओम शांति भाई साहब, और कुछ नहीं बोलेंगे। और कोई थोड़ा ज्यादा पहचान वाले होंगे तो वो क्या कहेंगे कि भाई साहब आप कैसे हैं, तो मुझे तो बाबा की याद भूल जाएगी। आप देखिए हमारे जो बड़े बड़े भाई बहन हुए हैं, कितना इन्होंने सूक्ष्म पुरुषार्थ, कितनी सूक्ष्म मेहनत अपने साथ की है। इसको कहा जाता है अंतर्मुखता। हमें अंतर्मुखी माना मेरी ये कर्म इंद्रियां शांत शीतल, मुझे किसी को नहीं देखना है। हम तो यहां क्लास में भी बैठे बैठे, मान लीजिए मैं सबसे आगे बैठी हूं, बाबा की मुरली भी सुन रही हूं, कोई बड़े क्लास करा रहे हैं क्लास भी सुन रही हूं, ध्यान तो मेरा क्लास की तरफ है, लेकिन आंख किधर जा रही है, कहां जा रही है? अगर उधर से किसी ने एंटर किया या कोई कौन जा रहा है, सुन रही हूं, कान मेरे सुन रहे हैं, मुरली भी सुन रही हूं, दादी का क्लास है सुन रही हूं, लेकिन मेरी आंख कैसे जाएगी? इधर जाएगी, उधर जाएगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि अंतर्मुखी नहीं हूं। तो कर्म इंद्रियां बाहर के आकर्षण को देखती हैं, और जब मैं अंतर्मुखी हूं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत बार आप देखेंगे, अगर चेक करेंगे, हम बहुत अच्छा ऐसा योग में बैठे हुए हैं और देखते हैं अचानक उधर से दो चार लोग एंटर कर रहे हैं, योग में बैठे भी थोड़ी सी नजर यूं जाती है कौन आ रहा है, क्योंकि हम अभी तक अंतर्मुखी नहीं है। मेरी जो कर्म इंद्रियां हैं इनको बाहर का, अब देखिए इसमें क्या आकर्षण है, कोई भी आया या कोई भी गया, हम जानते भी नहीं है, लेकिन इन कर्म इंद्रियों को अभ्यास, इसको कहते हैं देह भान, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहां बैठ रहा है। तो आत्म अभिमानी, जो कहते हैं बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, प्रैक्टिकल में हमें हर सेकंड में चेक करना है मैं इस समय आत्मिक स्थिति में हूं। आत्मा की सबसे पहली स्थिति है शांत। मैं आत्मा, पहले पहले योग सीखते हैं तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो केवल कहना नहीं शांत स्वरूप हूं, कर्म करते हुए मेरा फुल ध्यान मेरे कर्म पर हो, अपने पर हो, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो कर्म में दिखाई दे, ये है आत्मिक स्थिति। अभी जो भाई बहने आ रहे हैं, प्लीज आवाज नहीं करें, माताओं की संख्या अधिक है, जिनको जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए, ये बीच में नहीं बैठना क्योंकि जाने का रास्ता होगा। और जो बच्चे सोफे पर बैठे हैं, बच्चे नीचे बैठे हैं ताकि बड़ों को जगह मिल सके। तो पुनः हम अपनी बात पर आते हैं कि बाबा ने हम बच्चों के लिए ये मीठे बच्चे केवल रसम नहीं है, लेकिन मीठे बच्चा जैसे ही बाबा मुझे कहता है तो भगवान की दुआएं मुझ आत्मा को मिलती हैं। तो अभी हम सब मधुबन में आए हैं, अपना दुआओं का खाता भरपूर करके जाएं। और मैंने आपको इसकी बहुत सहज विधि बताई है, कुछ भी नहीं करना है, केवल दो बातों को चेक करना है। मेरा जो व्यवहार है वो रफ नहीं, ऐसे नहीं हम दूर से अरे तुम आओ तुम कौन हो का ना, अपने को शांत रखना है। यहां तो हमें कोई चिंता नहीं, कुछ लेना देना नहीं, ना रोटी बनाने की चिंता, ना सब्जी खरीद के लाने की चिंता, ना दूध लाने की चिंता, ना चाय बनाने की चिंता, वो भी बनी बनाई टंकी भरी हुई होती है, जिसको जितनी पीनी है पियो, फीकी भी है तो मीठी भी है। लेकिन हम अपने अभ्यास में मगन रहें। किस अभ्यास में? मैं आत्मा कौन हूं? शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप रहूं बस। दूसरा, जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दिए हैं, भोजन करना है बाबा की याद में करना है और मौन में रह के करना है। तो अभी जो हम चार पांच दिन रहेंगे, यही अभ्यास यहां से हमें करके जाना है। तो क्या हो जाएगा उससे? क्या होगा प्राप्ति? क्या होगी इससे? हमारा दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। डायरेक्ट बैठ जाइए आप लोग, हमें डायरेक्ट भगवान से दुआएं मिलती जाएंगी। कौन कौन भगवान से दुआएं लेना चाहते हैं? तो सब सुन रहे हैं ना ध्यान से, विधि सुनी, कितनी सहज विधि है। तो अपना अपनी झोली अपना खाता दुआओं से भरें, दुआओं से भरपूर हों, बाबा के घर से खूब कमाई करके जाएं। ठीक है, ओम शांति। अब ऐसा है कि उधर का भी क्लास पूरा हुआ है तो सब भाई बहन आ रहे हैं, इसलिए जो सेवाधारी भाई बहन हैं जो आने वाले हैं उनको अभी बाहर रोकें, बाहर ही बिठाएं, बाहर की लॉबी में बिठाएं, अंदर अभी नो एंट्री, क्योंकि हॉल ये भी फुल हो चुका है। ये माताएं जो खड़ी हैं प्लीज बाहर लॉबी में चले जाएं, और हमारी जो व्यवस्था है भाई भाइयों की तरफ बैठें, माताएं माताओं की तरफ बैठें, उसी तरीके से बैठना है, अपनी व्यवस्था को अपने नियमों को नहीं तोड़ना है। यही तो हमारे विद्यालय की शोभा है। सुन रहे हैं माताएं, भाई भाइयों की तरफ बैठो, माताएं माताओं की तरफ बैठो, ये बीच बीच में ऐसे नहीं बैठो, क्योंकि दादियां आएंगी, जब दादियां देखती हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उस तरफ से प्लीज एंट्री बंद कीजिए।
सेवाधारी भाई बहने ध्यान देंगे, पीछे की खिड़कियां खोल दें ताकि पीछे लॉबी में भाई बहने खड़े हो सके। पीछे की सब खिड़कियां खोल दें थोड़ा सा, सेवाधारी भाई बहने ध्यान दें। और माताएं अनुरोध है कि आप लोग पीछे की तरफ थोड़ा चले जाओ, और भाई लोग जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे आ जाएं, और ये जो नीचे बैठे हुए भाई हैं थोड़ा खिसके, थोड़ा जगह बनाओ, थोड़ा खिसक के बैठो, आगे आके बैठो। अभी कई भाई बहने बैठ सकते हैं,
जो पीछे खड़े हैं प्लीज आप बाहर बालकनी में ही बैठे। ये भी अभी हम मानना भी तो सीखे ना। हां जी, बीच में जो माताएं खड़ी हैं प्लीज, क्योंकि जगह ही नहीं है तो कहाँ बैठेंगे, एक कुर्सी पे तो एक ही बैठेगा।
थोड़ा सा सब बाहर
एक बैठेंगे। बहन उठती है दूसरी कहती है बैठ जा, कितनी शक्ति है ना हमारे में। ऐसे खड़े ना रहें, बैठने की अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो इधर बीच के पैसेज में तो बैठ सकते हैं, बैठ जाएं, बाकी इधर नहीं बैठना है, बस उधर वालों में बैठ सकते। जो पीछे माताएं खड़ी हैं प्लीज बाहर की बालकनी में बैठें, फिर जब सौगात शुरू होगी तो कुछ लोग सौगात लेकर जाते जाएंगे, फिर बाहर वालों को अंदर एंट्री मिलेगी। आप ऐसे नहीं सोचना कि हम बाहर होंगे तो फिर सौगात मिलेगी या नहीं मिलेगी, सौगात सबको मिलेगी, लेकिन बैठने की जितनी जगह है उतने ही बैठ सकेंगे। सेवाधारी भाई बहन थोड़ा ध्यान दीजिए, एंट्री बंद कीजिए। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे,
खिड़की खोल देंगे और गेट बंद कर दें पीछे के, खिड़की खोल दें, गेट बंद कर दें ताकि एंट्री बंद हो जाएगी, खिड़की खोल देंगे तो पीछे खड़े रहेंगे सब। सेवाधारी भाई बहन पीछे की खिड़कियां खोल दें।